पाठ 25 अध्याय 25।
पिछले सप्ताह हमने इसराइल के गोत्रों के प्रतीकों के बीच संबंध पर चर्चा करके समाप्त किया और कैसे इन गोत्रों को विभाजनों में व्यवस्थित किया गया और जंगल के तंबू के चारों ओर एक सटीक क्रम में रखा गया जिसमें अजीब आध्यात्मिक प्राणी हैं जिन्हें बाइबल कभी कभी जीवित प्राणी कहती है जो परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन को घेरे रहते हैं। और हमने देखा कि इसराइल के 12 गोत्रों को परमेश्वर द्वारा 3-3 गोत्रों के 4 विभाजनों में संगठित करने का निर्देश दिया गया था और प्रत्येक विभाजन के एक गोत्र को उस विभाजन का नेता नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 4 विभाजनों को तंबू के बाहर एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करना था, जैसा कि कंपास पर बिंदुओं द्वारा परिभाषित किया गया था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 4 प्रमुख कबीलाओं के प्रतीक थे सिंह, बैल या सांड, गरुड़ और एक मनुष्य। जब हमने यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य की जांच की तो हमें बताया गया कि ये जीवित प्राणी जो यहोवा के स्वर्गीय सिंहासन की रक्षा करते थे और जहां कहीं परमेश्वर जाता था उसके साथ जाते थे, उनके 4 चेहरे थे, एक सिंह, एक बैल, एक उकाब और एक मनुष्य। इसलिए हम देखते हैं कि इसराइल को जंगल के तंबू के साथ जिस तरह से डेरा डालना था उसका कारण यह था कि यह स्वर्गीय सिंहासन कक्ष के शाश्वत पैटर्न का अनुसरण करता था और यह द्वैत की वास्तविकता का एक अद्भुत उदाहरण है जिसके अनुसार प्रत्येक आध्यात्मिक सिद्धांत का एक भौतिक सांसारिक प्रतिरूप होता है और इसके विपरीत भी।
आइए हम निर्गमन अध्याय 25 को पाहें और जंगल में निवास स्थान के निर्माण के लिए प्रारंभिक निर्देश देखें। यह परमेश्वर का पार्थिव निवास स्थान है।
निर्गमन अध्याय 25 पूरा पढ़ें। एक दिलचस्प बात पर ध्यान दें, तंबू का खाका दिए जाने से पहले हमें पवित्र फर्नीचर और बलि के उपकरणों के कई टुकड़ों के निर्माण का विवरण दिया गया है। इसलिए तंबू के निर्माण के बारे में निर्देश संक्षेप में अंदर से शुरू होते हैं और बाहर की ओर बढ़ते हैं। यहोवा के निर्देश सबसे पवित्र संदूक से शुरू होते हैं, फिर पवित्र मेनोरा, शोभरेड की मेज और धूप की वेदी की ओर बढ़ते हैं और अंत में पवित्र स्थान से मानवता के क्षेत्र आंगन में जाते हैं जहां बलि की वेदी स्थित है। हम इन सभी की विस्तार से जांच करेंगे। पद 1 में परमेश्वर मूसा से कहता है कि वह चाहता है कि मूसा इसराइली लोगों से तंबू के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करे, लेकिन केवल उन लोगों से जो किसी दबाव के देने के लिए तैयार है। यह एक भेंट, एक योगदान होना चाहिए। किसी भी अन्य कारण से कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए सिवाय इसके कि व्यक्ति इसे देना चाहता है। ध्यान दें कि कोई दंड नहीं है, न ही इसराइल के लोगों पर देने के लिए कोई सहकर्मी दबाव या अपराध बोध लागू किया जाना है। मूसा या यहोवा द्वारा कोई भव्य भाषण नहीं दिया गया है जो बिल्डिंग फंड शुरू करने के लिए एक मॉडल के रूप में हमारे लिए छोड़ा गया है। आवश्यकता बताई गई है और फिर देना या तो लोगों के दिलों से है या बिल्कुल नहीं। हालांकि तंबू इसराइल के पूरे समुदाय के लाभ के लिए है, इसलिए यह उचित रूप से अपेक्षित है कि सभी एक या दूसरे स्तर पर योगदान देंगे।
इब्रानी सोच में एक से ज्यादा तरह की भेंट होती है। इस खास तरह की भेंट को तेरुमाह कहा जाता है, जिसका कभी कभी अनुवाद एक उठाई हुई भेंट के रूप में किया जाता है। इसका अर्थ है योगदान देना। यह है देने वाला किसी जरूरत या किसी आम कारण में योगदान दे रहा है। यह अजीब लगने वाला शब्द उठाई हुई भेंट वास्तव में उस तरीके का वर्णन करता है जिससे भेंट परमेश्वर को पेश की जाती थी। अनुष्ठान परंपरा के अनुसार भेंट को पुजारी द्वारा कंधे से ऊपर उठाया जाता था और इस तरह से घुमाया जाता था जैसे कोई अनाज का थैला उठा रहा हो हाथ से। और इस प्रकार की भेंट, ये तेरुमाह अपने आप में बलिदान नहीं था, क्योंकि बलिदान न केवल कानून के उल्लंघन को सुधारने के लिए या किसी प्रकार के उत्सव या वाचा के अनुष्ठान को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य थे, बल्कि अधिकांश, यद्यपि सभी नहीं, बलिदान जला दिए जाते थे। बलि के लिए किसी कानूनी रूप से निर्धारित राशि और विशेष प्रकार के बलिदान के अनुसार पशु या अनाज या शराब या धन देना आवश्यक था। तेरुमाह में स्वतंत्र इच्छा का तत्व था। मैं इसे आसानी से हमारे देने या दशमांश के बारे में एक सबक में बदल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं विरोध करूंगा और आपके पादरियों को, जो इस तरह के मामलों में बेहतर प्रशिक्षित हैं, इसे निपटाने दूंगा। इसके बजाय मैं ये कहूंगा, मुझे लगता है कि हमें यह याद रखने की जरूरत है कि चर्च के अधिकारियों द्वारा हमारे देने, हमारे दशमांश को पुराने नियम के बलिदान प्रणाली के नए नियम के रूप में चित्रित करने के सभी प्रयास केवल गुमराह करने वाले हैं और बाइबल द्वारा समर्थित नहीं है। बलिदान बलिदान है और भेंट भेंट है। वे उद्देश्य और प्रकृति में पूरी तरह से अलग हैं और यीशुआ ने पहले ही तोरह की बलिदान प्रणाली की हर आवश्यकता को एक बार और हमेशा के लिए पूरा कर दिया है। इसलिए हमारे देने या दशमांश को बलिदान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, बल्कि हमारे देने के बारे में परमेश्वर सिद्धांत हमारे लिए वही निर्गमन 25 की पहली पद में निर्धारित किया गया है। यह स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट के बराबर है, तेरुमा। या तो हम किसी साझा उद्देश्य के लिए खुशी खुशी स्वतंत्र रूप से यहोवा ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञता से दान देते हैं, क्योंकि हम योगदान देने की आवश्यकता और अपने कर्तव्य को पहचानते हैं, या फिर हमें दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन चर्च जिस प्रकार का दान करता है वह किसी भी प्रकार से बलिदान के दायरे में नहीं आता। यह एक विशेषाधिकार है, एक कर्तव्य है और विवेक का कार्य है। इससे पहले कि हम तंबू के निर्माण और खाके के बारे में पारहें, जो निश्चित रूप से थोड़ा थकाऊ हो सकता है, मैं आपको आधे घंटे का एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो तंबू के पैटर्न और इस्तेमाल की गई सामग्रियों, उसके औजारों और उसके फर्नीचर और उन्हें कहाँ रखा गया था के बारे में बेहतर ढंग से बताता है। मुझे लगता है कि एक बार जब आपके दिमाग में वह तस्वीर आ जाएगी तो इसे पढ़ते समय यह अधिक समझ में आएगा। अध्याय 25 से आगे। मुझे उम्मीद है कि आपने जो वीडियो देखा है उसमें तंबू के कुछ टुकड़े सही जगह पर रखे गए हैं। आज हम फर्नीचर के उन अलग अलग टुकड़ों पर नजर डालने जा रहे हैं जो सिर्फ सजावट से कहीं बढ़कर हैं। कृपया ध्यान दें कि तंबू के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। धातु, रंगे हुए धागे, कपड़े, लकड़ी, तेल, मसाले और रत्न, जैसा कि नहुम सरना, एक अद्भुत तोरह विद्वान, ने उल्लेख किया है। कुछ कपड़ों के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प विशेषता है जिसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि कई बार इन कपड़ों में ऊन और लिनन का मिश्रण होता है। हो सकता है कि यह आपके लिए अभी बहुत मायने न रखता हो, लेकिन जब हम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो यह आपके लिए मायने रखेगा। इसका कारण यह है कि इस तरह के कपड़े का मिश्रण आम तौर पर निषिद्ध है। इब्रानी में कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए दो प्रकार की सामग्री के इस तरह के मिश्रण को शाअतनेज कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कपड़े आमतौर पर इस तरह के मिश्रित रेशों की सामग्री से नहीं बनाए जाते हैं। फिर भी हम पाएंगे कि पवित्रतम को बाकी पवित्र स्थान से अलग करने वाला पर्दा, तंबू पवित्र स्थान में प्रवेश पर पर्दा, यहां तक कि उच्च पुजारी के अनुष्ठान के कपड़ों के कुछ हिस्सों को भी इसी मिश्रण, इस शातनेज से बनाया जाना आवश्यक है जो अन्यथा निषिद्ध है। इससे हम यह सीखते हैं कि कुछ चीजें यहोवा द्वारा निर्धारित सबसे पवित्र के लिए आरक्षित हैं और उस संदर्भ के बाहर इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए मिश्रित कपड़ों के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ भी अपवित्र या अशुद्ध नहीं है, यानी लिनन और ऊन को एक साथ बुनने से कोई जादुई अंतक्रिया नहीं होती है जिससे परिणामी कपड़ा कुछ अलग या विकृत हो जाता है। यह समझ कोबेर बनाम अशुद्ध खाद्य पदार्थों से लेकर स्वच्छ बनाम अशुद्ध जानवरों के पदनाम तक हर चीज के पीछे के सिद्धांतों को सही ढंग से समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सोचना गलत है कि किसी भी भोजन या जानवर में किसी प्रकार की जन्मजात व्यवस्थित पवित्रता होती है, जबकि दूसरे भोजन या जानवर में किसी प्रकार की जन्मजात व्यवस्थित अशुद्धता होती है। बल्कि सामान्य तौर पर इसका संबंध परमेश्वर के संप्रभु निर्धारण और उसके सामने क्या और कैसे अनुष्ठान और पूजा होनी है, इस बारे में अकल्पनीय निर्णयों से है। यह वास्तव में इतना सरल है। इससे पहले कि हम तंबू के साज सामान की जांच शुरू करें, मैं अध्याय 25 की पद 9 पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जो कुछ मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसके अनुसार तुम्हें इसे बनाना होगा, तंबू का डिजाइन और साज सामान की डिजाइन। यह मूसा के 40 दिनों के दौरान माउंट सिनाई के शीर्ष पर यहोवा की मूसा से बातचीत थी। अध्याय 25 में इस बिंदु पर मूसा अभी तक लोगों के पास वापस नहीं आया है। अब कई संस्करण इस पद को मैं तुम्हें जो नमूना दिखाता हूं उसके अनुसार इसे बनाना के रूप में बोलेंगे और यह निश्चित रूप से सटीक है। लेकिन सवाल यह है कि निश्चित रूप से वह कौन सा नमूना है जो परमेश्वर मूसा को दिखा रहा है? क्या यहोवा ने पपीरस स्क्रॉल पर एक खाका तैयार किया है और मूसा को सांसारिक तंबू का बारीक विवरण दिखा रहा है? नहीं, यहोवा मूसा को परमेश्वर के स्वर्गीय निवास स्थान का भ्रमण करा रहा है। याद रखें, निवास स्थान इब्रानी में मिशकन सिर्फ एक अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है निवास स्थान। जंगल में तंबू बनाने के लिए मूसा को जिस नमूने का अनुसरण करना था वह परमेश्वर की आत्मिक इच्छा थी। तंबू, उसका सिंहासन कक्ष, उसका निवास स्थान, जो सभी एक ही चीज को संदर्भित करते हैं, स्वर्ग में आध्यात्मिक निवास के बारे में मूसा के दृष्टिकोण को एक कार्यशील मॉडल, एक प्रतिलिपि में परिवर्तित किया जाना था, लेकिन भौतिक क्षेत्र में विकसित किया जाना था। अब क्या यह मेरी ओर से केवल एक अच्छा लगने वाला रूपक या सिद्धांत है, या क्या कोई और सबूत है कि स्वर्गीय वास्तव में वह पैटर्न था जिसके बारे में यहां बात की जा रही है? इब्रानियों 8:5 को सुनिए, परंतु जो वे सेवा करते हैं वह तो स्वर्गीय मूल की नकल और छाया मात्र है, क्योंकि जब मूसा तंबू खड़ा करने पर था तो परमेश्वर ने उसे चिताया, सावधान रहना कि जो नमूना तुझे पर्वत पर दिखाया गया है उसके अनुसार सब कुछ बनना।
इब्रानियों 8:9 में कुछ समय स्वर्गीय और सांसारिक के बीच तुलना करने में बिताया गया है, जिसमें तंबू और बलिदान प्रणाली का उपयोग करके अपनी बात कही गई है। लेकिन ये वही अध्याय हैं जो एक ऐसे सिद्धांत की ओर भी इशारा करते हैं जिसे आसानी से बदला जा सकता है या हमारे दिमाग में बस एक तरह से अनदेखा किया जा सकता है, और वह यह है, भौतिक स्वभाव से आध्यात्मिक से कमतर है। यानी जो कुछ भी आत्मिक दुनिया में मौजूद है वह अपनी क्षमताओं और शुद्धता में भौतिक दुनिया में संभव चीजों से कहीं बेहतर है। उदाहरण के लिए, तंबू और उसकी सभी सेवाएं वास्तविक और परमेश्वर द्वारा नियुक्त होने के बावजूद वास्तविक मूल स्वर्गीय तंबू, जो निश्चित रूप से सांसारिक तंबू से पहले और उसके साथ ही अस्तित्व में था, की नकलें हैं। बाइबल सांसारिक और स्वर्गीय की तुलना करने के लिए छाया शब्द का उपयोग करेगी, जैसे कि यह आने वाली चीजों की छाया थी जब तंबू, भविष्यवाणियों और व्यवस्था के कई तत्वों का वर्णन किया जाता है। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि आध्यात्मिक मूल की तुलना में भौतिक प्रतिलिपि उससे मेल नहीं खा सकती। वह वास्तविकता की वह गहराई प्रदान नहीं कर सकती जो वास्तविक चीज प्रदान कर सकती है। लियोनार्डो द विंची माउंट एवरेस्ट की इतनी शानदार तस्वीर बना सकते हैं, शायद कोई और नहीं बना सकता, लेकिन इसकी तुलना असली माउंट एवरेस्ट से कभी नहीं की जा सकती। पेंटिंग असली चीज की छाया मात्र है। भौतिक दुनिया बहुत सीमित है क्योंकि यह भौतिकी के नियमों द्वारा शासित है और अंतरिक्ष और समय के ब्रह्मांड के भीतर समाहित है। आध्यात्मिकता उन सीमाओं और नियमों के बाहर काम करती है। अतः तंबू का प्रत्येक तत्व, इसके कमरे, इसकी सामग्री, इसकी डिजाइन, इसका फर्नीचर, बलिदान प्रणाली, सब कुछ स्वर्गीय मूल के अनुरूप बनाया गया था और उस समय की ओर देखा गया जब मसीहा के माध्यम से मानव जाति इसके अर्थ की असीम आध्यात्मिक वास्तविकता का अनुभव करने में सक्षम होगी, न कि गंभीर रूप से सीमित भौतिक प्रतियों का। अब आइए तंबू के बारे में सामान्य प्रकृति के कुछ विस्मयकारी संबंधों और प्रतीकात्मकता पर नजर डालें। सबसे पहले ध्यान दें कि इसे उसी तरह से बनाया गया था जिस तरह से माउंट सिनाई का भौगोलिक क्षेत्र बनाया गया था, यानी पहाड़ और तंबू को पवित्रता की अलग अलग डिग्री के तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। पहाड़ पवित्र था, पूरा पवित्र पहाड़ के तल पर एक पत्थर की बाड्डा, एक सीमा चिन्ह था जो पवित्र पहाड़ को नीचे घाटी के तल से अलग करता था, पवित्र क्षेत्र को उस क्षेत्र से अलग करता था जहां लोग एकत्र हो सकते थे। माउंट सिनाई की संपूर्णता तंबू के पवित्र स्थान के बराबर थी और पवित्र स्थान में दो झुरे हुए कमरे थे, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। माउंट सिनाई का शिखर यह स्थान था जहां परमेश्वर की आत्मा विश्राम करती थी, वहां ऊपर बादल में जो प्रचंड आग की तरह जल रहा था और केवल एक व्यक्ति को उस क्षेत्र में आने की अनुमति थी और केवल तभी जब यहोवा द्वारा बुलाया जाता था मूसा। शिखर परम पवित्र स्थान के बराबर था जिससे केवल उच्च पुजारी ही प्रवेश कर सकता था, कोई और नहीं। और फिर वर्ष में केवल एक दिन परमेश्वर द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट दिन, योम किप्पुर, प्रायश्चित का दिन। पहाड़ की ढलान तंबू अभयारण्य में पवित्र स्थान के बराबर थी, माउंट की ढलान सिनाई की ढलान व जगह थी जहां परमेश्वर ने मूसा, 70 बुजुर्गों, लोगों के प्रतिनिधि, साथ ही हारून और उसके दो बेटों को बुलाया और उसके सामने वाचा भोज का आयोजन किया। उन्हें उस बाधा रेखा को पार करना था जो पवित्र को बाकी सब चीजों से अलग करती थी, वह पत्थर की बार जिसे अब तक लोग पार नहीं कर सकते थे, लेकिन वेदी पर बलिदान के कारण जिसने वाचा को सील कर दिया और उस बलि दिए गए जानवर के खून के कारण जो लोगों पर छिड़का गया था और इसलिए औपचारिक रूप से उनके पाप के लिए प्रायश्चित किया गया था और उन्हें ढक दिया गया था। परमेश्वर ने अब इन 74 लोगों को अनुमति दी जो पूरे इसराइल, मूसा, हारून, नदाव, अपदहू और 70 बुजुर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, पवित्र पर्वत पर आने के लिए, हालांकि शिखर पर नहीं, परम पवित्र स्थान पर नहीं, केवल पहाड़ की ढलान, पवित्र स्थान, थोड़ी कम पवित्रता का क्षेत्र। चट्टानी बार की घाटी तल की ओर वह स्थान था जहां इब्रानी लोग एकत्र हो सकते थे। यह मानवता का क्षेत्र था लेकिन केवल अलग थलग लोगों के लिए, केवल उन लोगों के लिए जो छुराए गए हैं। यह वह स्थान भी है जहां परमेश्वर ने मूसा को एक पत्थर की वेदी बनाने का निर्देश दिया था जिस पर मूसा की वाचा को सील करने के लिए बलिदान चढ़ाए जाने थे। यह घाटी तल क्षेत्र तंबू के बाहरी प्रांगण के बराबर था जहां बलिदान की कांस्य वेदी बनाई जानी थी और जहां परमेश्वर के छुराए गए लोग अपने बलिदान चढ़ाने के लिए आ सकते थे। अतः हम इस प्रतिरूप की समानता को प्रत्येक उस स्थान पर देखते हैं जहां परमेश्वर निवास करता है। उसका स्वर्गीय निवास स्थान उसके प्रत्येक सांसारिक निवास स्थान के लिए आदर्श था, जिसकी शुरुआत अदन की वाटिका से होती है, फिर माउंट सिनाई, फिर जंगल का निवास स्थान और फिर उसका स्थानापन्न मंदिर। मैं आपको एक और दिलचस्प संबंध दिखाने के लिए थोड़ा अलग विषय पर आता हूं। 400 साल पहले यहोवा ने अकाल से बचने के लिए कनान से इसराइल के नवजात कबीले को मिस्र में लाया। इसराइल वहां रहने लगा और बहुत अधिक गिनती में बढ़ने लगा और एक विशाल राष्ट्र बन गया। जब यूसुफ, याकूब का पसंदीदा पुत्र, मिस्र का गवर्नर था और याकूब अपने पूरे कबीले को यूसुफ के निमंत्रण पर मिस्र ले गया ताकि वह फिर से शुरू कर सके, क्या आपको याद है कि इसराइल के पूरे कबीले में कितने लोग शामिल थे? यूसुफ और उसके परिवार को गिने तो ठीक 74, इसराइलियों की ठीक उतनी ही गिनती जिन्हें परमेश्वर ने इसराइल के लिए एक और नई शुरुआत करने के लिए अपने पवित्र पर्वत पर आने के लिए बुलाया था, इस बार उनके लिए एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में। अब ध्यान रखें, निश्चित रूप से 74 से ज्यादा इसराइली थे जो कनान से मिस्र की यात्रा करके आए थे। वास्तव में कितने लोग आए यह हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि इसराइल के मिस्र में जाने से कुछ समय पहले कम से कम एक घटना हुई थी जिसमें याकूब के राष्ट्र में काफी गिनती में लोग झुर गए थे, जब शेखेम में याकूब के बेटों ने उस शहर के निवासियों पर बदला लेने के लिए हमला किया। राजा के बेटे द्वारा दीना के साथ बलात्कार करने का बदला लेने के लिए उन बेटों ने शेखेम के अंदर सभी पुरुषों को मार डाला और सभी महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया। चूंकि यह उस समय की सभी मध्य पूर्वी संस्कृतियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया थी, इसलिए यह संभावना है कि इसी तरह की अन्य घटनाएं भी हुई हों, शायद इतने बड़े पैमाने पर नहीं, जिसमें नवजात इजरायली राष्ट्र के आकार को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को पकड़ा गया हो। मिस्र में आने वाले 74 इसराइलियों ने
मिस्र में प्रवेश करने वाले पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया, ठीक उसी तरह जैसे 74 इसराइलियों को परमेश्वर ने अपने पर्वत पर आने के लिए बुलाया था, जो मिस्र छोड़ने वाले इसराइली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। मूसा ने माउंट सिनाई के आधार पर 12 खरे पत्थर, 12 स्मारक बनवाए, जो कि इसराइल के 12 गोत्र का परमेश्वर के सामने प्रतिनिधित्व करते हैं। तदनुसार परमेश्वर ने निर्देश दिया कि तंबू में एक मेज होनी चाहिए जिस पर हर समय 12 रोटियां रखी जाएं, जो तंबू के अंदर उसके सामने इसराइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के दो अलग अलग कमरों के अंदर सभी झुरनार सोने से बने थे, जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। अभयारण्य के बाहर बाहरी प्रांगण में सभी झुरनार कांस्य और कम मूल्यवान धातुओं से बने थे। अब मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं, जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा और जैसा कि आपने देखा है और शास्त्रों में देखेंगे, तंबू में यहोवा की कोई छवि नहीं थी। यहोवा का धर्म एक छवि रहित धर्म होना चाहिए था। 10 आज्ञाओं में से दूसरी आज्ञा ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके व्यक्तित्व की कोई छवि बनाई जाए। इब्रानियों का धर्म पहला था और मेरी जानकारी के अनुसार इसके उपधर्म ईसाई धर्म के साथ एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें परमेश्वर कहता है कि उसकी कोई छवि नहीं बनाई जानी चाहिए। हमें इस बारे में और छवियों और प्रतीकों के प्रति हमारे झुकाव के बारे में लंबे और गहन विचार करने की आवश्यकता है। अगले सप्ताह हम उस पहली वस्तु की जांच करेंगे जिसे परमेश्वर ने लोगों के योगदान अर्थात तेरुमाह से बनाने का निर्देश दिया था, वाचा का संदूक।